नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बेतिया में गंडक नदी पर प्रदेश के सबसे लंबे पुल निर्माण की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के कार्यभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री आज पदभार ग्रहण करेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। और गोवा में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बिहार पवेलियन के प्रति देखा जा रहा है भारी उत्साह। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बेतिया में प्रदेश के सबसे लंबे पुल के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। गंडक नदी पर बनने वाले इस पुल से बिहार से उत्तर प्रदेश आना जाना और आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस पुल को हाइब्रिड एन्यूटी मोड हैम मॉडल में निर्माण की मंजूरी दी है। इसके तहत चयनित एजेंसी को लागत राशि का 60% खर्च स्वयं करना होगा, जबकि शेष राशि का वहन केंद्र सरकार करेगी। 12 किलोमीटर लंबे इस पुल को बनाने में 1976 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस पुल का निर्माण राज्य पुल निर्माण निगम के जरिए किया जाएगा। अब इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद विभिन्न विभागों के मंत्रियों का कार्यभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। आज कई मंत्री अपने विभाग का कार्यभार संभालेंगे। गृहमंत्री सम्राट चौधरी आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इनके अलावा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, पथ निर्माण और नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन समेत कई मंत्रियों के आज पदभार ग्रहण करने की संभावना है। गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग मंत्री विजय कुमार चौधरी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश और गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार पहले ही अपने अपने विभागों का पदभार ले चुके हैं। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में बन रहे भव्य जानकी मंदिर का निर्माण कार्य अगले 42 महीनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने पुनौरा धाम में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। श्री प्रसाद ने कहा कि मंदिर की भूमि का सीमांकन कार्य आज से शुरू किया जाएगा।
भगवान श्री राम मंदिर का जिस प्रकार से निर्माण हुआ है, उसी तर्ज पर मां सीता के मंदिर का निर्माण यहां होना है। उसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है और उसमें अब हम बाउंड्री के जो फिनिशिंग होगा उसका सीमांकन का काम होगा और जिस दिन से निर्माण शुरू होगा उसके 42 महीने के बाद हम इस काम को पूरा कर देने की चुनौती को स्वीकार करते हुए इस विभाग का हम पदभार ग्रहण करेंगे।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे न्यायमूर्ति भूषण आर गवई का स्थान लेंगे, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। एक रिपोर्ट।
1962 में हिसार हरियाणा में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1984 में हिसार जिला न्यायालय में वकालत शुरू की। संवैधानिक सेवा और सिविल मामलों में उनकी विशेषज्ञता रही है। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों, बैंकों और खुद उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जुलाई 2000 में हरियाणा का सबसे युवा महाधिवक्ता होने का गौरव प्राप्त हुआ। 2004 में उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। अक्टूबर 2018 में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मई 2019 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को सरल और प्रभावी बनाने के लिए चार प्रमुख श्रम संहिताओं को 21 नवंबर से लागू कर दिया है। नई संहिताओं के लागू होने के साथ ही देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत कर सुव्यवस्थित किया गया है। श्रम संगठन समन्वय केंद्र के राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रसाद तिवारी ने श्रम संहिता सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जिससे 45 करोड़ असंरक्षित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाए जा सकेंगे और देश के कार्यबल में क्रांतिकारी बदलाव होगा।
मुझे लगता है कि भारत के श्रमिकों के इतिहास के लिए ये बहुत ही जरूरी कानून है और ये पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। हम इसका स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, भारत का जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है, इसमें बहुत ही चेंजेज आएंगे और ये चेंज से मजदूरों की जीवन दशा बदलेगी।
इधर प्रदेश में श्रम संहिता के संबंध में विभिन्न संस्थानों में श्रमिकों को जागरूक किया जा रहा है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के कर्मियों को सुपरवाइजर द्वारा श्रम संहिता के लाभों की जानकारी दी गई। नई श्रम संहिताएं मजदूरों के अधिकार, सुरक्षा और पारदर्शिता को सुदृढ़ करती हैं।
नया कानून लागू हुआ है, इससे पहले से नए कानून जोड़े गए हैं, जिसमें आप लोगों को मेडिकल सुविधा साल में एक बार कंपनी कराएगी, जिसमें आप लोगों को पहले से होता था और नए कानून में वो भी प्रावधान दिया जा रहा है। और दूसरा मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट का एक रेट तय किया गया है, जो मिनिमम मजदूरी दर है उससे थोड़ी भी कम पैसा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये है, आपका जो ओवर टाइम का ड्यूटी है वो दुगना है, अब 8 घंटे के बाद जो काम कर रहे हैं है ना, ओवर टाइम डबल आपको।
छठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस कार्यक्रम में पूर्ण सत्र, विषयगत संगोष्ठी, मुख्य व्याख्यान, पोस्टर प्रस्तुति, प्रदर्शनी तथा युवा वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों की बैठक आयोजित होगी। इस वर्ष सम्मेलन की थीम है स्मार्ट कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए नई कृषि विज्ञान परिकल्पना। सम्मेलन में कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रमुख कृषि व्यवसाय नवाचारियों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। गोवा में चल रहे 56वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 5वें दिन भी लोगों का भारी उत्साह और आकर्षण बना हुआ है। आकाशवाणी से प्रस्तुत है इस भव्य आयोजन की एक रिपोर्ट।
कलाकारों और सिने प्रेमियों की चहल पहल तथा सितारों से सजे रेड कार्पेट, व्यस्त फिल्म बाजार और लगातार फिल्मों की स्क्रीनिंग तक इस उत्सव ने गोवा को रचनात्मकता के जीवंत रंगों के साथ सिनेमाई संस्कृति में रंग दिया है। महोत्सव का 4वां दिन कल भारत की अलग अलग तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गुलजार रहा। यहां आने वाले दर्शकों को बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और असम के लोक नृत्य तथा लोकगीतों का शानदार नजारा देखने को मिला। वहीं कई छोटे फिल्म निर्माता इफ्फी में भारतीय सिनेमा को विविधतापूर्ण बनाए हुए हैं। इसका उदाहरण बंगाली फिल्म ये फिल्म आधुनिक रिश्तों की भावनात्मक जटिलताओं को दर्शाती है, जो शहरी परिवेश में प्रेम संबंध, पारिवारिक संघर्ष और बदलते मूल्यों को छूती है। इफ्फी दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को भी एक ही छत के नीचे ला रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक यहां अपनी फिल्मों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जापान की कंट्री फोकस फिल्में टाइगर और सी साइड सेरेंडिपिटी कल मीडिया इंटरेक्शन दौरान चर्चा के केंद्र में रही। इसके अलावा न्यूजीलैंड के फिल्म निर्माता रॉबर्ट सर्किस की फिल्म पाइक रिवर अन्ना ओसबर्न और सोनिया रॉकहाउस की एक सशक्त कहानी है, जो इस वक्त दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा।
फिल्म महोत्सव में बिहार पवेलियन के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बिहार फिल्म निगम के प्रबंध निदेशक प्रणव कुमार ने प्रदेश में फिल्म की शूटिंग वाले स्थलों का डेटाबेस प्रदर्शित किया है। उन्होंने बताया कि निर्माताओं की सुविधा के लिए 1 विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया गया है, साथ ही सभी जिलों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर के बलिदान को हर वर्ष शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। वर्ष 1675 में आज ही के दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। गुरु तेग बहादुर ने पूरे देश में गुरु नानक देव के संदेशों का प्रसार किया। उन्होंने 116 शब्द और 15 रागों की रचना की। उनके संदेश आदि ग्रंथ में निहित हैं। शहीदी दिवस के अवसर पर देश भर के विभिन्न गुरुद्वारों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पटना स्थित तख्त हरिमंदिर साहिब में इस अवसर पर अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इधर अररिया के फॉरबिसगंज स्थित गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा में शबद कीर्तन, गुरु का अरदास के साथ ही गुरु का प्रसाद वितरित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अलीनगर से नवनिर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट करने के मामले में गुजरात से एक किशोर को गिरफ्तार किया गया है। बिहार और गुजरात पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। मामले में दरभंगा साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित होगा। दीक्षांत समारोह का उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां करेंगे। समारोह में 63 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीयूष अग्रवाल को मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में मामूली बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का न्यूनतम तापमान 12 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इस दौरान सबसे कम 12.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान किशनगंज में रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम दृश्यता 600 मीटर गयाजी और पूर्णिया में दर्ज की गई। विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है।
अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है।
प्रदेश में कई स्थानों का वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान हाजीपुर लगातार तीसरे दिन प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां का AQI 210 दर्ज किया गया। वहीं 205 AQI के साथ सासाराम प्रदूषित शहरों में दूसरे स्थान पर रहा। पटना का AQI 141 दर्ज किया गया। 60 वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ समस्तीपुर की हवा सबसे साफ रही। कूच बिहार ट्रॉफी के एलिट मुकाबले में बिहार ने मेजबान तमिलनाडु के खिलाफ पहली पारी में 203 रन बनाए हैं। तमिलनाडु ने दिन के आखिर में एक ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 3 रन बना लिए हैं। इधर सेपक टाकरा स्टेट चैंपियनशिप का खिताब पटना ने जीत लिया है। डबल सब जूनियर बालिका वर्ग तथा सब जूनियर और जूनियर बालक वर्ग में पटना ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक के ठिकानों पर छापेमारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की प्रमुख खबर है, उत्पाद अधीक्षक के पास 5.5 करोड़ रुपए की संपत्ति, पटना जहानाबाद में आलिशान मकान। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, राजद ने 32 गायकों को नोटिस भेज पूछा, क्यों बिगाड़ी छवि। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, मस्जिद और इमामबाड़ा के दस्तावेजों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी, हज भवन में लगा कैंप। प्रभात खबर लिखता है, अब घर में बनेगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डाक विभाग से मात्र 70 रुपये में मिलेगी ये सुविधा। आज अखबार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर शीर्षक लगाया है, सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है, बिहार सरकार सनातन धर्म को देगी बढ़ावा, सभी 38 जिलों में नियुक्त होंगे संयोजक। राष्ट्रीय सहारा ने नव निर्वाचित विधायकों को जल्द आवास आवंटित किए जाने की खबर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने बेतिया में गंडक नदी पर प्रदेश के सबसे लंबे पुल निर्माण की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के कार्यभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी समेत कई मंत्री आज पदभार ग्रहण करेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। और गोवा में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बिहार पवेलियन के प्रति देखा जा रहा है भारी उत्साह। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जायेगा।